श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद अध्याय 9 श्लोक क्रमांक 32। श्री भीष्म उवाच इति मतिरूपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभुम्ने स्वसुख उपगते क्वचित् विहर्तुम् प्रकृति उपेयुषि यद् भव प्रवाह श्री भीष्म उवाच इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभुम्ने स्वसुख उपगते क्वचित् विहर्तुम् प्रकृतिम् उपयेषि यद् भव प्रवाह श्री भीष्म उवाच इति मतिरूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभुम्ने स्वसुख उपगते क्वचित् विहर्तुम् प्रकृतिम् उपेयुषि यद् भव प्रवाह जिस
Thank you.
श्री भीष्म उवाच श्री भीष्म देव ने कहा इति इस प्रकार मति ही सोचना विचारना तथा चाहना उपकल्पिता नियुक्त करना वितृष्णा समस्त इंद्रिय इच्छाओं से मुक्त भगवती भगवान में सात्वत पुंगवे भक्तों के नेता में विभुम्नि परम स्वसुखम आत्मतोष उपगते प्राप्त हुए क्वचित कभी कभी विहर्तुम दिव्य आनंद से प्रकृतिम भौतिक जगत में उपेयुषि स्वीकार करें यद भव जिनसे सृष्टि प्रवाह बनी है तथा विनष्ट होती है। अनुवाद और तात्पर्य एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा। भीष्म देव ने कहा अभी तक मैं जो सोचता जो अनुभव करता तथा जो चाहता था वह विभिन्न विषयों तथा वृत्तियों के अधीन था, किंतु उसे अब मैं परम शक्तिमान भगवान श्री कृष्ण में लगाना चाहता हूं। वे सदैव आत्मतुष्ट रहने वाले हैं, किंतु कभी कभी भक्तों के नेता होने के कारण इस भौतिक जगत में अवतरित होकर दिव्य आनंद लाभ करते हैं। यद्यपि यह सारा भौतिक जगत उन्हीं के द्वारा सृजित है। तात्पर्य, चूंकि भीष्म देव एक राजनीतिक कुरुवंश के मुखिया महान सेनापति तथा क्षत्रियों के अग्रणी थे, अतएव उनका मन अनेक विषयों में बटा रहता था और उनका चिंतन अनुभूति तथा उनकी इच्छाएं विभिन्न बातों में लगी रहती थी। अब शुद्ध भक्ति प्राप्त करने के उद्देश्य से वे परम पुरुष भगवान कृष्ण पर ही सारे चिंतन अनुभूति तथा इच्छाओं को केंद्रित करना चाहते थे। यहां पर उन्हें श्री कृष्ण को भक्तों का अग्रणी तथा सर्वशक्तिमान कहा गया है। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण आदि भगवान हैं, लेकिन वे अपने भक्तों के अग्रणी नेता हैं। भगवान के शुद्ध भक्तों में भगवान की सेवा करने के अतिरिक्त अन्य कोई इच्छा नहीं रहती, अतएव वे सात्वत कहलाते हैं और भगवान ऐसे सात्वतों में अग्रणी हैं। इसीलिए भीष्म देव को कोई अन्य इच्छा नहीं हुई। जब तक मनुष्य सभी प्रकार की भौतिक इच्छाओं से शुद्ध नहीं हो लेता, तब तक भगवान उसके नेता नहीं बनते। इच्छाओं को मिटाया नहीं जा सकता, लेकिन उन्हें शुद्ध करना होता है। भगवत गीता में भगवान ने स्वयं पुष्टि की है कि वे भगवान की सेवा में निरंतर लीन रहने वाले शुद्ध भक्त के हृदय के भीतर से उपदेश देते हैं। ऐसा उपदेश किसी भौतिक अभिप्राय से नहीं अपितु भगवान के धाम वापस जाने के लिए दिया जाता है। भगवत गीता के 10वें अध्याय में भगवान सामान्य व्यक्ति के लिए जो प्रकृति पर अपना प्रभुत्व दिखाना चाहता है न केवल उसकी इच्छा पूर्ति करते हैं, उसके कार्यों के साक्षी बनते हैं, अपितु वे अभक्तों को भगवत धाम जाने के लिए कभी कोई उपदेश नहीं देते। विभिन्न जीवों, भक्तों तथा अभक्तों के साथ भगवान के आचरण में यही अंतर है। वे समस्त जीवों के अग्रणी हैं। जिस प्रकार राजा बंदियों तथा स्वतंत्र नागरिकों का समान रूप से शासक होता है, लेकिन भक्तों तथा अभक्तों के प्रति उनके व्यवहार भिन्न भिन्न होते हैं। अभक्त लोग भगवान से कभी कोई उपदेश ग्रहण करने की परवाह नहीं करते, इसीलिए वे उनके विषय में मौन बने रहते हैं। यद्यपि वे उनके सारे कार्यों के साक्षी बनकर उन्हें अच्छा या बुरा फल देते रहते हैं, भक्तगण इस भौतिक अच्छाई बुराई से परे हैं। वे आध्यात्म पथ पर अग्रसर होते रहते हैं, अतएव उन्हें किसी प्रकार की कोई भौतिक इच्छा नहीं रहती। भक्त यह भी जानता है कि श्री कृष्ण ही आदि नारायण है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ही अपने पूर्णांश से कारणों दक्षाय विष्णु के रूप में प्रकट होते हैं, जो सारी भौतिक सृष्टि के मूल उत्स हैं। भगवान अपने शुद्ध भक्तों के साथ संगति करने के भी इच्छुक रहते हैं और उन्हीं के लिए वे इस धरा पर अवतार लेकर उन्हें जीवन दान देते हैं। भगवान स्वेच्छा से प्रकट होते हैं, वे प्रकृति की परिस्थितियों से बाध्य नहीं होते, अतएव उन्हें विभू या सर्वशक्तिमान कहा गया है, क्योंकि वे प्रकृति के नियमों से कभी नहीं बंधते। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं। वंदेहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदान सहगणा ललिता श्री विशाखान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधुर जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे बृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। भीष्म देव ने कहा, अभी तक मैं जो सोचता, जो अनुभव करता तथा जो चाहता था वह विभिन्न विषयों तथा वृत्तियों के अधीन था, किंतु उसे अब मैं परम शक्तिमान भगवान श्री कृष्ण में लगाता हूं। वे सदैव आत्मतुष्ट रहने वाले हैं, किंतु कभी कभी भक्तों के नेता होने के कारण इस भौतिक जगत में अवतरित होकर दिव्य आनंद लाभ करते हैं। यद्यपि यह सारा भौतिक जगत उन्हीं के द्वारा सृजित है। श्रील प्रभुपाद जी जब वो अपनी अंत्य लीला में थे श्री वृंदावन धाम में, तो श्रील प्रभुपाद जी ने अपने उदाहरण से सभी इस्कॉन के भक्तों को सिखाया कि किस प्रकार से एक वैष्णव को अपना शरीर त्यागना चाहिए। और श्रील प्रभुपाद जी ने जिस तरीके से अपने शरीर को त्यागा उनकी तुलना भीष्म देव से की गई है। ये जो प्रसंग चल रहा है, भीष्म देव जो अब अपना देह त्याग करने वाले हैं, और हालांकि भीष्म देव वो कुरुक्षेत्र की रणभूमि में अपना देह त्याग करने वाले हैं, तो कुरुक्षेत्र ये धर्म क्षेत्र किस लिए कहा गया था? क्योंकि कुरुक्षेत्र में जो युद्ध लड़ा गया वो धर्म की स्थापना करने के लिए लड़ा गया, और विशेष रूप से कुरुक्षेत्र को पुण्य भूमि इसलिए कहा गया है क्योंकि स्वयं भगवान श्री कृष्ण वहां पर मौजूद थे उस धर्म की स्थापना करने के लिए। और विशेष रूप से भीष्म देव के लिए स्वयं भगवान श्री कृष्ण चलकर, भीष्म देव अब जो बाणों की शैया पर लेटे हुए हैं, अपना दर्शन, अपना संग, अपना सानिध्य देने के लिए गए। तो इससे बड़ा धाम और क्या हो सकता है किसी व्यक्ति को अपना देह त्याग करने के लिए। और श्रील प्रभुपाद जी, हालांकि उनकी इच्छा थी उस समय भी 1977 में नवंबर के महीने में प्रभुपाद जी का शरीर जो है पूरा जीर्ण हो चुका था, केवल कुछ हार्ड मास बचे थे, परंतु श्रील प्रभुपाद जी फिर भी भक्तों से कह रहे थे कि यदि प्रचार कार्य मेरे लिए आयोजित करो तो मैं लंदन, अमेरिका, रशिया, ये सब जगह पर जाने का इच्छुक हूं। उस अवस्था में भी, और श्रील प्रभुपाद जी ने इतने इस्कॉन के मंदिर स्थापित किए, इतने मूर्तियों की प्रतिष्ठापना की, इतने भक्तों को दीक्षा दी, आध्यात्मिक साम्राज्य इतना बड़ा स्थापित किया श्रील प्रभुपाद जी ने, परंतु अंत समय श्रील प्रभुपाद जी ने एक ऐसा वाक्य कहा। हालांकि श्रील प्रभुपाद जी ने यह भी कहा अपने शिष्यों को कि ये मत समझना कि जो मेरे शरीर के साथ अब हो रहा है वो तुम लोगों के शरीर के साथ नहीं होगा। कई बार जब हम वृद्ध अवस्था को देखते हैं किसी व्यक्ति के, तो हमें इतना बुरा नहीं लगता। कई बार लोग सोचते हैं कि कम से कम मैं तो इस अवस्था में अभी नहीं हूं, कम से कम मैं तो तंदुरुस्त हूं, स्वस्थ हूं और बहुत आयु बाकी है मेरी। और ये केवल भौतिकतावादी मनुष्य नहीं सोचते, भक्ति में भी हमारी धारणा कई बार ऐसी होती है। और महाराज कुलशेखर हमारे इस धारणा को, इसके ऊपर सीधे वो वार कर रहे हैं। महाराज कुलशेखर क्या कहते हैं, कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरांतम अद्यैव विशतु मे मानस राज हंस प्राण प्रयाण समये कफवात पित्तये कंठावरुधन विधौ स्मरणम कुटस्थे। महाराज कुलशेखर अपनी सुंदर प्रार्थना में वो ये जो धारणा है हमारी कि अब हम तंदुरुस्त हैं, स्वस्थ हैं, जवान हैं, युवा अवस्था में हैं और आगे चलकर जब वृद्धावस्था आएगी तब थोड़ा और गंभीर बनेंगे भक्ति में, क्योंकि उस समय और कुछ रहेगा नहीं करने के लिए। तो महाराज कुलशेखर कहते हैं कि मैं युवावस्था में हूं, मेरा शरीर स्वस्थ है, अभी मैं अपना देह त्याग करना चाहता हूं। यह है महाराज कुलशेखर का दृष्टिकोण, युवावस्था में अपना देह त्याग करना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि अभी मेरी चेतना आप में बनी हुई है और मेरा शरीर जो स्वस्थ है, शरीर स्वस्थ होने के कारण मेरा जो मन है वो आप में लग पा रहा है। देखिए, हालांकि हमारा सिद्धांत है कि हम शरीर नहीं आत्मा हैं, परंतु क्योंकि ये आत्मा का संग इस शरीर से इतना निकट का है तो जब शरीर अस्वस्थ रहता है तो मन अस्वस्थ रहता है, और जब मन अस्वस्थ रहता है तो हमारी भक्ति अस्वस्थ बन जाती है। इसीलिए भक्ति विनोद ठाकुर, उन्होंने अलग अलग स्तर बताए हैं हमारी साधना भक्ति के, और इन अलग अलग स्तरों में भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि सबसे पहला चरण है हमारा स्वास्थ्य। हमारा स्वास्थ्य ठीक होना चाहिए और स्वास्थ्य ठीक होने के लिए चार नियम हैं। ये जो चार नियम हैं ये अपने आप हमारे स्वास्थ्य को ठीक रखेंगे, और स्वास्थ्य जब ठीक रहेगा तो हमारी साधना ठीक होगी, और जब साधना ठीक होगी तब जाकर प्रचार ठीक होगा, और जब प्रचार ठीक होगा तब जाकर लोग भक्त बनेंगे, और लोग भक्त बनना तो दूर, हमें भक्ति में रुचि आएगी। तो स्वास्थ्य एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। ऐसा नहीं कि हमने ये समझ लिया कि हम शरीर नहीं हैं तो बस रोज इस शरीर को अलग अलग प्रकार के दुख पीड़ा और कठिनाई में रखो, ये भक्ति का सिद्धांत नहीं है। तो श्रील प्रभुपाद जी ने अपने शिष्यों को कहा कि ये मत समझना कि जो कुछ मेरे शरीर के साथ अब हो रहा है ये तुम्हारे शरीर के साथ नहीं होगा, ये सबके शरीर के साथ होना है। परंतु श्रील प्रभुपाद जी ने इतना सब कुछ, इतने वो सफल रहे श्री चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन को स्थापित करने में, परंतु अंत समय में श्रील प्रभुपाद जी ने क्या कहा, कुछ इच्छा नहीं। यहां पर भीष्म देव भी उसी प्रकार से कह रहे हैं कि अब मैं अपनी चेतना पूर्ण प्रकार से भगवान श्री कृष्ण में लगाना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि भीष्म देव वो इस बात का निरूपण कर रहे हैं कि मेरा पूरा जीवन मैं केवल राज दरबार में और राजनीति में मैंने बिताया है, तो अलग अलग प्रकार की राजनीति के कार्य और शत्रुओं का संहार करना, विजय प्राप्त करना, राज्य को बढ़ाना, केवल ये सभी कार्यों में मेरी चेतना रही, तो अब मैं पूर्ण प्रकार से भगवान श्री कृष्ण जो मेरे समक्ष खड़े हैं उनके चरण कमलों पर अपनी चेतना लगाना चाहता हूं। तो हमें भी सीखना चाहिए भीष्म देव के उदाहरण से, क्योंकि वो एक महाजन है और उनके पद चिन्हों पर हमें चलना है, तो सीखना चाहिए कि हमारा कितना जीवन हमने भी इसी प्रकार से कितने ऐसे कार्यों में लगा दिया था जो बिल्कुल कृष्ण भावना भावित होने के अनुकूल नहीं थे, वो कार्य बल्कि प्रतिकूल थे। और इसलिए जितना जल्दी हो सके हमें अब अपनी चेतना पूर्ण प्रकार से भगवान श्री कृष्ण में हर क्षण लगानी चाहिए, क्योंकि भौतिक संसार में रहते हुए, विशेष रूप से कलयुग में रहते हुए, जो प्रदूषण की मात्रा है उसकी कोई गणना नहीं है कि कितना प्रदूषण है इस कलयुग में। हमारी चेतना को प्रदूषित करने के लिए कितने सारे प्रदूषित कार्य हैं इस कलयुग में। जैसे कि उदाहरण दिया जाता है कि किसी का घर यदि रास्ते पर हो और रास्ते पर गाड़ी का आना जाना लगा रहता है, तो हर एक घंटे में यदि वो देखेगा तो धूल जमा होती रहती है घर में, और दिन में कई बार झाड़ू पोछा लगाना पड़ता है। यदि वो नहीं लगाए तो धूल इकट्ठा हो होकर बड़ी सतह बन जाएगी धूल की। तो उसी प्रकार से ये जो हमारा शरीर और हमारा मन, हमारी चेतना जो है, ये कलयुग में जो हम रह रहे हैं, तो वो उस घर के समान है जो रास्ते पर है। हर समय धूल आती है, प्रदूषण आता है और जमा होता रहता है, और कई बार दिखाई नहीं देता कि प्रदूषण कितना है। जैसे अभी हम बैठे हैं, सब कुछ बहुत साफ दिखता है आंखों को, दिखने में सब कुछ, हवा साफ है और पानी को भी यदि आप देखो दूर से तो पानी बहुत साफ दिखता है, क्या है इसमें, और पीकर भी देखो तो स्वाद भी बहुत अच्छा है। जैसे हमारे यहां पर ये म्युनिसिपैलिटी का पानी आया करता था, तो ये म्युनिसिपैलिटी का पानी दिखने में एकदम साफ दिखता है, परंतु कब पता लगता है कि इसमें कितना प्रदूषण है, वो उसमें वो तुरटी और तुरटी घुमाई जाती है तब फिर पता लगता है कि कितना प्रदूषण उसके अंदर था। तो उसी प्रकार से हम जब श्रवण कीर्तन करते हैं तो वो हमारी चेतना में तुरटी घुमाने जैसा है, तब पता लगता है कि हमारी चेतना के अंदर प्रदूषण कितनी मात्रा में है। तब तक हमें लगता था कि इतना बुरा मैं नहीं हूं, बल्कि अच्छा हूं मैं, और कई बार हमें लगता था कि हम हरे कृष्ण वालों को कुछ सिखा सकते हैं, मेरा जो सत्व गुण है, मेरे अच्छे गुण जो हैं। कई लोग हैं इस संसार में जो अपने आप को बहुत सत्वगुणी मानते हैं, वो सोचते हैं कि भक्ति वगैरह ये हरे कृष्ण वालों को पता नहीं, हम सिखाएंगे कि कैसे सत्वगुण में आना चाहिए और धर्म क्या है। तो भीष्म देव यहां पर, हालांकि वो तो शुद्ध भक्त हैं, भगवान के नित्य पार्षद हैं, परंतु देखिए वो अपने उदाहरण से हमें सिखा रहे हैं कि किस प्रकार से हर क्षण हमारी चेतना भगवान में लगी रहनी चाहिए। और ये नहीं सोचना चाहिए कि आगे चलकर जब मेरी स्थिति थोड़ी शांत हो जाएगी, अभी मेरी स्थिति जो है वो शांत नहीं है, अशांत है, बहुत से कार्य करना बाकी है मेरे जीवन में, वो सारे कार्य निपटा लूं तो फिर जाकर मैं ये महामंत्र लेकर बैठूंगा तो शांति से पूरा एकाग्रचित होकर तब भगवान में मन लगेगा। हाल ही में एक बहुत ही ऐसा कठोर उदाहरण हमने हमारे भक्त समुदाय में देखा कि एक राधा गोपीनाथ मंदिर की एक माताजी, जो कि पहले राधा गोपीनाथ मंदिर के कांग्रीगेशन में थी और उसके पश्चात वो वृंदावन में सेटल हुई, का नाम है गंगा माता, और ये बहुत पढ़ी लिखी थी, बहुत इन्होंने बड़ी डिग्री ली थी IIM से और बहुत बड़े परिवार से, पैसों वालों के परिवार से थी, परंतु सब कुछ छोड़ छाड़ कर ये वृंदावन में गई और वहीं पर अपना आगे का जीवन और ये शरीर को त्यागने के लिए, और कोई ज्यादा उम्र नहीं थी उनकी, केवल कुछ 38 से 40 साल ये उम्र थी उनकी, और वो 10 साल तक वृंदावन में रही और फिर उन्होंने सोचा कि यहां पर मथुरा में कॉलेजों में प्रचार करना चाहिए, मेरे पास डिग्री भी है तो उसका इस्तेमाल, उसका उपयोग कर प्रचार करना चाहिए। तो कुछ कोर्स करने के लिए वो वृंदावन से पहली दफा बाहर गई 10 साल के बाद, और टाटानगर रेलवे स्टेशन पर उन्हें हार्ट अटैक आया और रेलवे स्टेशन पर उनका देहांत हुआ। कोई आसपास भक्त नहीं और वृंदावन धाम से बाहर निकलकर कोई रेलवे प्लेटफॉर्म के ऊपर उनका देहांत हुआ। तो देखिए, इस संसार का जो नियम है वो इस प्रकार का है। और मैं जब 2 साल पहले अमेरिका गया था तो वहां पर शिकागो में एक भक्त, उनकी इच्छा हुई कि बहुत दिन हुए भारत नहीं गए और वृंदावन का दर्शन नहीं किया, तो वो शिकागो से वृंदावन आए और वृंदावन में उनका शरीर उन्होंने त्याग दिया। देखिए, ये भगवान की योजना। तो हमें ये नहीं समझना चाहिए कि अब तो तिलक लगा लिया है, दीक्षा हो गई है, कंठी माला है और वृंदावन धाम में मैं हूं, तो इससे अच्छा सौभाग्य और क्या हो सकता है। अब तो भाई भगवत धाम जाना निश्चित हो गया मेरा। तो देखिए, चाहे हम कितना भी प्रयोजन कर लें, जब तक भगवत इच्छा नहीं, और यह भी संभव है कि यदि किसी का शरीर वृंदावन धाम से बाहर भी वो त्यागे, परंतु चेतना यदि भगवान में है तो भगवत धाम अवश्य जाएगा। और श्रील प्रभुपाद जी ने कहा, एक बार अपने शिष्यों के साथ बैठे थे तो श्रील प्रभुपाद जी बता रहे थे कि जो तथाकथित योगी हैं वृंदावन धाम में और जो गलत कार्यों में लगे हैं, वो आगे चलकर वृंदावन धाम में ये जो बंदर और सुअर हैं ये बनते हैं वृंदावन धाम में। भगवत प्राप्ति नहीं होती, बल्कि वृंदावन धाम में जो पशु हैं, बंदर हैं इत्यादि, वो बन जाते हैं। तो प्रभुपाद जी बता रहे थे कि जो केवल वृंदावन धाम में अपनी जिह्वा की लालसा के लिए जाते हैं तो वो सुअर की योनि में जाते हैं वृंदावन में, और कई जो गलत व्यभिचार करने जाते हैं वो बंदर बन जाते हैं। तो एक भक्त ने पूछा कि प्रभुपाद जी, जो नशा करते हैं, ये गांजा इत्यादि ये सब पीते हैं, ये क्या बनते हैं? तो प्रभुपाद जी ने कहा, वो सैन फ्रांसिस्को के हिप्पी बनते हैं, क्योंकि वो भक्त सैन फ्रांसिस्को के थे। तो चाहे हम कोई भी योजना बाहरी रूप से कर लें, तो योजना बाहर से नहीं होनी चाहिए भगवत प्राप्ति की, योजना होनी चाहिए अंदर से। क्या मैं अंदर से तैयार हूं कि नहीं? और इसलिए जब हरिदास ठाकुर को जब चैतन्य महाप्रभु मिलने आए, तो चैतन्य महाप्रभु ने देखा कि हरिदास ठाकुर बीमार अवस्था में, वृद्ध अवस्था में वो लेटे हुए हैं खाट के ऊपर। तो चैतन्य महाप्रभु पूछते हैं कि इतने बीमार क्या अवस्था है आपकी अब? तो हरिदास ठाकुर क्या उत्तर देते हैं चैतन्य महाप्रभु को कि मेरा शरीर बिल्कुल स्वस्थ है, हालांकि पूरा शरीर जर्जर हो गया था हरिदास ठाकुर का। वो कहते मेरा शरीर बिल्कुल स्वस्थ है, परंतु मेरा मन बीमार है। और कितने माला वो कर रहे थे उस समय भी, तकरीबन 190 माला रोज वो किया करते थे, और फिर भी वो कह रहे हैं कि मेरा मन बीमार है। शरीर स्वस्थ है, मन बीमार है, और हमारा उल्टा होता है। हम कई बार सोचते हैं मन मेरा चंगा, परंतु ये शरीर काम नहीं दे रहा, इसीलिए हरिनाम नहीं ले पा रहा, क्योंकि समय नहीं है। और शरीर के लिए कितना समय निकाल लेते हैं हम। मैं जब पिछले हफ्ते बंबई में था, तो मैंने देखा कि बंबई के जो थिएटर हैं, सिनेमा घर, ये जो सिनेमा घर हैं, सिनेमा देखने के लिए लोग कितने समय के पाबंद होते हैं कि सिनेमा शुरू होने के आधे एक घंटे पहले पहले तो लाइन में खड़ा होना पड़ता हो टिकट लेने के लिए, और फिर अंदर सबसे पहले जाकर बैठ जाओ कि जब सिनेमा शुरू होगा तो एक एक पल जो कुछ वो दिखाएंगे वो तीन घंटे में वो मिस नहीं होना चाहिए। बड़े समय के पाबंद होते हैं, और इन्हीं को यदि भगवान की कथा में बुलाओ तो समय की पाबंदी देखनी चाहिए। भगवान की कथा सुनने के लिए कोई समय की पाबंदी होनी चाहिए क्या? वो तो कभी भी सुन सकते हैं, क्योंकि भगवान वो समय के ऊपर हैं, तो उनकी कथा भी समय के ऊपर होनी चाहिए। कभी भी आओ, कभी भी सुनो, उसमें क्या पाबंदी। तो एक भौतिकतावादी मनुष्य अपने भौतिक कार्यों में हर चीज पक्का करेगा, परंतु आध्यात्मिक कार्यों के लिए कोई नियम नहीं होने चाहिए। अरे, भगवान को पूजने के कोई नियम होने चाहिए? कहीं पर भी पूजा जा सकता है भगवान को, वो तो कृपालु हैं। प्रभुपाद जी को जब ऐसे कहा जाता था कि भगवान को तो कहीं पर भी पूजा जा सकता है, तो प्रभुपाद जी ने कहा, हां, कहीं पर भी, मंदिर के अलावा। कि उनके अनुसार भगवान सर्वव्यापी हैं मंदिर के अलावा। तो मंदिर में नहीं आना चाहते, क्योंकि मंदिर में आएंगे तो वहां पर जो मंदिर के नियम हैं वो नियम पालन करने होंगे, और भगवान के सामने सारा पर्दाफाश हो जाएगा। जो जो आसक्तियां हैं वो सारी आसक्तियां फिर दिखने लगेंगी और पता लग जाएगा कि ये मेरी बीमारी है। तो यदि कोई मरीज अपनी बीमारी को छिपाना चाहता है केवल ये सोचते हुए कि यदि मैं बीमारी को छिपा दूंगा तो स्वस्थ दिखूंगा, तो हां दूर से स्वस्थ दिखेगा, परंतु क्योंकि अंदर बीमारी पनप रही है तो केवल कुछ समय की बात है कि धीरे धीरे उसका जो शरीर है वो उस बीमारी के वजह से जर्जर हो जाएगा। तो उसी प्रकार से हमारी भक्ति में यदि हम भगवान को पाने के साथ साथ भौतिक इच्छा भी रखते हैं तो वो उस बीमारी के समान है। यह एक उदाहरण दिया गया है कि लकड़ी का यदि एक खंभा या लकड़ी का ये जो स्टूल है यहां पर, ये देखिए दूर से दिखेगा कि हां ये यहां पर खड़ा है, परंतु यदि अंदर से दीमक इस लकड़ी को खाना शुरू कर दे, दीमक जानते हैं क्या कहते हैं उसे मराठी में, वाळवी, तो ये जो दीमक या वाळवी ये जो लकड़ी को खाना शुरू करेगा तो ये दीमक का एक बहुत ही विशेष गुण है कि ये बाहर से दिखाता नहीं कि लकड़ी को खा रहा है, अंदर ही अंदर उसको खाता रहेगा और अंदर ही अंदर वो पूरा खोखला कर देगा लकड़ी को, परंतु लकड़ी बाहर से सुदृढ़ दिख रही है और ये पूरा स्टूल ऐसा का ऐसा खड़ा रहेगा। इसे थोड़ा सा धक्का मारो तब पता लगेगा कि इसके अंदर तथ्य कितना है, पूरा चूर चूर होकर गिर जाएगी लकड़ी। तो उसी प्रकार से हमारा मन जो है उसमें यदि भौतिक इच्छा हम उसको स्थान देंगे तो वो उस दीमक के समान है, धीरे 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 अंदर ही अंदर वो हमारी भक्ति को खाते रहेगी। और हमें पता भी नहीं लगेगा कि कितना हमको खा लिया है इस भौतिक इच्छा ने। और फिर जब माया का थोड़ा सा झोंका लगेगा तब फिर पता लगेगा कि अरे बाप रे, कि मेरी भक्ति में तो कोई दम ही नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि माया की परीक्षा नहीं होती तब तक हमें लगता है कि मैं बहुत प्रगति कर रहा हूं, परंतु माया ने अब तक अपने परीक्षा का पेपर सामने नहीं रखा आपने। तो जैसे ही माया अपनी परीक्षा का पेपर सामने रखती है तब पता लगता है कि कितनी पढ़ाई की है। जैसे कई बार हमने परीक्षा में देखा होगा, हम बहुत पढ़े, रात भर पढ़ते हैं और लगता है कि बस अब आगे से लेके पीछे तक पूरी पुस्तक मैंने कंठस्थ कर ली है, अब कहीं से भी प्रश्न पूछो तुरंत। और जब परीक्षा का पेपर सामने आता है तो कई बार समझ में नहीं आता कि ये प्रश्न इस पुस्तक से पूछा गया है कि कहां से पूछा गया है, वो भाषा ही समझ में नहीं आती। तो इसलिए जब माया देवी परीक्षा करती है तब समझ में आता है कि हम कितने पानी में हैं भक्ति के, या पानी को छुआ है कि नहीं। तो यहां पर देखिए भीष्म देव, इनकी परिस्थिति कैसी है, इनकी परिस्थिति ऐसी है कि अब ये बाणों की शैया पर लेटे हुए हैं और कुरुक्षेत्र की रणभूमि में और अपना देह त्याग इस प्रकार से कर रहे हैं। यदि एक डॉक्टर को पूछा जाए कि कोई व्यक्ति जब इस अवस्था में अपना शरीर त्याग कर रहा है तो उसे बाणों की शैया पर लेटना चाहिए या अच्छे गद्दे पर लेटना चाहिए, या तो अस्पताल में लोग जब उस अवस्था में रहते हैं अपने शरीर त्यागने की अवस्था में तो अलग अलग प्रकार के आराम के साधन दिए जाते हैं उस व्यक्ति को कि बिल्कुल तकलीफ न हो, और वो बेड भी अस्पताल में इस प्रकार से बनाया जाता है कि वो ऊपर नीचे हो पाए, कि उसे हिलने की भी जरूरत न पड़े, वो बेड ही हिलता रहे, ऐसा बनाया जाता है। जितना ज्यादा आराम मिल सके उस व्यक्ति को, क्योंकि अब कुछ समय में तो बिल्कुल आराम मिलने वाला है। परंतु यहां पर देखिए भीष्म देव के लिए क्या आराम का साधन, बाणों की शैया के ऊपर और इतनी बाण भीष्म देव के शरीर में, और किसने, अर्जुन ने मारे कि दो बाण के बीच में एक उंगली न जा सके, इतने सारे बाण शरीर में भेदे थे। तो कोई व्यक्ति कहेगा कि भाई भीष्म देव ये कैसे महाजन हुए कि उनके अंत समय ये सारे जो चिन्ह अशुभ चिन्ह दिख रहे हैं बाणों की शैया के ऊपर किसी रणभूमि में, ये कोई शुभ चिन्ह नहीं है शरीर त्यागने के। परंतु देखिए इस संसार में शुभ और अशुभ इसकी परिभाषा क्या है। शुभ और अशुभ की परिभाषा देश काल पात्र के अनुसार होती है। जैसे कि नारद मुनि एक सुंदर श्लोक में अपने नारद भक्ति सूत्र में वो कहते हैं, आराधितो यदि हरि तपसा तथा किम, न आराधितो यदि हरि तपसा तथा किम, नांतर बहिर यदि हरि तपसा तथा किम, अंतर बहिर यदि हरि तपसा तथा किम। बहुत ही सुंदर श्लोक है। नारद मुनि कहते हैं कि यदि भगवान श्री हरि की आराधना नहीं की है तो तपस्या कर क्या फायदा। आराधितो यदि हरि तपसा तथा किम, तो यदि तपस्या कर रहा है परंतु भगवान श्री हरि की आराधना नहीं की तो उस तपस्या का क्या फायदा, और यदि भगवान श्री हरि की आराधना कर रहा है कोई तब भी वो प्रश्न पूछ रहे हैं तपसा तथा किम, तो तपस्या की क्या आवश्यकता है फिर। और यदि जिस व्यक्ति ने यह जान लिया है कि भगवान श्री हरि ही अंदर और बाहर हैं, तब फिर उसे और कुछ जानने की आवश्यकता क्या है। और यदि किस व्यक्ति ने यह नहीं जाना कि भगवान श्री हरि अंदर बाहर हैं, तो उसने क्या जाना। तो शुभ और अशुभ, अब यदि एक भौतिकतावादी व्यक्ति से आप पूछो कि इस संसार में शुभ चीजें कौन सी हैं, तो क्या कहेंगे, अच्छा जन्म, अच्छी पढ़ाई, अच्छा रूप, बहुत यश, बहुत पैसा, ये सब कुछ शुभ माने गए। और यदि कुंती महारानी से पूछो तो कुंती महारानी क्या कहती है, जन्म ऐश्वर्य श्रुत शिबिर एदमान मद पुमान नैवार हत्याभिधा तुम वै त्वाम अकिंचन गोचर। कुंती महारानी कहती है कि ये जन्म ऐश्वर्य श्रुत और श्री ये सबसे बड़े अशुभ चिन्ह हैं भक्ति में प्रगति के लिए। बड़े कुल में जन्म, सुंदरता। हम दो दिन पहले ये हमारा जो फाउंटेन बन रहा है इसके लिए एक मत्स्यालय गए थे कुछ वहां पर देखने के लिए कि कुछ हमारे फाउंटेन के लिए है। तो मत्स्यालय के बाहर हमने देखा एक बड़े पिंजड़े में इतने पक्षी अंदर बांधे गए बंद थे और बहुत ही सुंदर दिखने वाले पक्षी, दिखने में इतने सुंदर रंग बिरंगी, कोई पीले कलर का पक्षी था, कोई बहुत सारे अनगिनत रंग उस पक्षी में थे, इस प्रकार के पक्षी और बहुत ही मासूम और सुंदर दिखने वाले पक्षी। तो हमारे गोपालानंद प्रभु का साक्षात्कार, बहुत ही सुंदर साक्षात्कार उन्होंने सुनाया। उन्होंने कहा कि देखो ये सारे पक्षी सुंदर हैं इसलिए पिंजड़े में बंद हैं। बहुत ही सुंदर साक्षात्कार आपका। उन्होंने कहा कि इतने सुंदर दिखते हैं इसलिए पिंजड़े में बंद है, यदि बदसूरत होते तो कोई पिंजड़े में बंद नहीं करता इनको। जैसे कौवा, कभी देखा किसी के घर में पिंजड़े में कौवा बंद है? तो कौवा एक दृष्टिकोण से भाग्यशाली है क्योंकि बदसूरत है। कभी आपने सुना कि कई बार लोग मेडिटेशन करते हैं तो उसमें ये पंछी की आवाज रिकॉर्ड लगाते हैं उसका। कभी आपने सुना कौवे की आवाज रिकॉर्ड लगाई है, कांव 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 और मेडिटेशन में बैठे। किसी के घर में कभी कौवे को पिंजड़े में नहीं देखोगे, बिल्कुल निष्फिक्र हो कि कौवा घूमता रहता है, उड़ता फिरता है। और ये पक्षी जो सुंदर दिखते हैं वो बंद अंदर पिंजड़े में। जितना सुंदर पक्षी उतना अधिक समय के लिए पिंजड़े में बंद रहेगा वो। तो उसी प्रकार से कुंती महारानी, जो हमारे गोपालानंद प्रभु का साक्षात्कार, वही कुंती महारानी कह रही हैं कि जब कोई व्यक्ति बहुत ऊंचे कुल में या बहुत सुंदर, तो वो पिंजड़े में बंद होता है। कौन से पिंजड़े में? एद मान मद पुमान, अहंकार के पिंजड़े में। जितना बड़ा कुल, जितना पैसा, जितना अच्छा रूप, उतना मोटा पिंजड़ा, उतना बड़ा पिंजड़ा अहंकार का, और उसके वजह से वो मुक्त तरीके से भगवान श्री कृष्ण का नाम या भगवान श्री कृष्ण के भक्तों के संग में नहीं आ सकता। जैसे कि हमारे भक्ति के कुछ अंग हैं, कुछ कार्य हैं, तो देखिए कोई व्यक्ति जो बहुत पैसा वाला है वो भगवान की कथा सुनने के लिए भक्तों के बीच नहीं बैठ सकता, क्योंकि उसे लगता है कि मैं केवल उन्हीं व्यक्तियों के मध्य में बैठ सकूंगा जो मेरे स्टैंडर्ड के होंगे। तो पैसा होने के वजह से वो एक तो मंदिर भी आएगा तो अपने आलीशान गाड़ी में आएगा और केवल दर्शन कर हाँ मैं आया हूं, सब देखो मैं इतना बड़ा व्यक्ति आया हूं, और फिर चला जाएगा। परंतु बैठकर नीचे जमीन पर पलाखी मारकर वो भगवान के विषय में कथा नहीं सुन पाएगा। और जो बहुत सुंदर व्यक्ति होता है उसे यदि कहो कि माथे पर तिलक लगाओ थोड़ा और सुंदर हो गया, ये क्या शिखा रखो पीछे, शिखा शर्म आती कई लोगों को शिखा रखने में, तिलक लगाने में, कंठी माला पहनने में। कई बार बाहर जाते तो कंठी माला बड़ी कर लेते हैं, नीचे दिखाई नहीं दे। या जब तिलक लगा हुआ हो तो बाहर जाने से पहले उसको मिटा लेते हैं, कि बाहर यदि कोई देखेगा अरे भाई सुंदरता कम हो गई है ये सब लगाकर, और बाकी सब पोतते रहेंगे, ये क्रीम वो लोशन ये केमिकल सब जगह पर, परंतु तिलक, तिलक क्या मट्टी लगाई है ऊपर। तो जो बहुत सुंदर है वो ये जो वास्तविक आभूषण है वो अपने ऊपर नहीं लगा सकेगा। और जो व्यक्ति नहीं नहीं वो कीर्तन चल रहा है उनका, करने दो उनको, बंद मत करो। और जो व्यक्ति बहुत यशस्वी है, बहुत ज्यादा उसका यश फैला हुआ है, वो व्यक्ति नम्रता से श्रवण नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसे क्या लगेगा, अरे मैं श्रवण किसी मुख से सुनना, अरे इतना मैं यशस्वी हूं, माइक मुझे दो मैं बोलूंगा। तो इसीलिए देखिए शुभ और अशुभ क्या है इस संसार में। भक्ति के दृष्टिकोण से ये जो जन्म ऐश्वर्य श्रुत ये सब कुछ अशुभ है, इसलिए कुंती महारानी कहती है कि शत्रु हैं मेरी भक्ति के। त्वाम अकिंचन गोचरम, क्योंकि आप जो अकिंचन गोचर है, किंचन कहते हैं कुछ थोड़े से मात्रा में कुछ चीज होती है किंचित, तो कुंती महारानी कहती है कि आप उनकी संपत्ति हो जिनके अंदर किंचित मात्रा में भी कुछ भौतिक गुण नहीं है। बहुत मात्रा में नहीं, किंचित मात्रा में भी नहीं, अकिंचन गोचर। तो ये देखिए शुभ और अशुभ की परिभाषा इस प्रकार से है। जैसे कि हम कुछ दिन पहले चर्चा कर रहे थे परीक्षित महाराज के विषय में, एक हमारे विवेक प्रभु के पुत्र परीक्षित, उनका जन्मदिन था। तो देखिए परीक्षित महाराज जो कि अपनी माता के गर्भ में और उनके ऊपर ब्रह्मास्त्र छोड़ा गया अश्वत्थामा द्वारा, तो बहुत ही अशुभ कार्य होने वाला था, परंतु उस अशुभ कार्य के वजह से परीक्षित महाराज को दर्शन मिला भगवान श्री कृष्ण का गर्भ में ही। और एक व्यक्ति जो गर्भ के बाहर बिना किसी इस परिस्थिति में हो सकेगा कि वो कभी भगवान का दर्शन न कर पाए, तो उत्तरा के गर्भ में ब्रह्मास्त्र उनके ऊपर छोड़ा जाना ये शुभ था कि अशुभ था? शुभ था। वृत्रासुर की कथा है श्रीमद् भागवत में कि वृत्रासुर जो कि महाराज चित्रकेतु अपने पिछले जन्म में, और उन्हें श्राप दिया गया, पार्वती ने श्राप दिया कि शिवजी वो बैठे हुए थे और कुछ विरक्तियों को प्रवचन दे रहे थे वैराग्य के ऊपर, शिवजी प्रवचन दे रहे थे और शिवजी की गोद में पार्वती बैठी थी। सोचिए ये दृश्य कैसा रहेगा, शिवजी के गोद में पार्वती बैठी हैं और शिवजी विरक्तियों को प्रवचन दे रहे हैं वैराग्य का। तो महाराज चित्रकेतु वहां पर आए और उन्होंने देखा तो उन्होंने उनको बहुत प्रसन्नता हुई कि केवल शिवजी ही ऐसा कर सकते हैं, और वो आदर से प्रसन्नचित होकर मुस्कुराए। और पार्वती ने समझा कि ये चित्रकेतु हंस रहा है हमारे ऊपर, तो श्राप दे दिया राक्षस बन जाओ असुर बन जाओ। और महाराज चित्रकेतु उन्होंने हाथ जोड़कर स्वीकार किया, ऐसा नहीं कि जाकर पार्वती को समझाए कि आपको पता नहीं मेरे मन में क्या था, पहले समझ लो उसके बाद में फिर ये कुछ कहना। तुरंत स्वीकार किया, ठीक है आपने श्राप दिया है ये भी आपकी कृपा। तो शिवजी वो आगे चलकर पार्वती को कहते हैं कि पार्वती तुम समझती हो कि तुम बहुत सुंदर हो, त्रिलोक सुंदरी हो, पर परंतु ये जो भक्त हैं, शरणागत भक्त भगवान श्री कृष्ण के, मेरे आराध्य देव के, इनसे अधिक सुंदर और कोई नहीं इस संसार में। क्योंकि जब इन्हें श्राप भी दिया जाए और वो चित्रकेतु वृत्रासुर के रूप में फिर वो जन्मे और दिखने में वो, इनका वर्णन किया गया है षष्ठम स्कंद में कि दिखने में वो इतने कुरूप थे, बहुत बड़ा विकराल उनका शरीर और काला भद्दा, दिखने में एकदम भद्दे, परंतु श्रीमद् भागवत, ये जो पुराण है, श्रीमद् भागवत पुराण अन्य पुराणों से अलग क्यों है? एक कारण बताया गया है, वृत्रासुर की कथा है इसके अंदर, ऐसे भक्त की कथा कि इंद्र वृत्रासुर को मारने के लिए आए और इंद्र को सारी शक्ति दी विष्णु ने वृत्रासुर को मारने के लिए, जो वज्र मिला, लंबी कथा है वो। तो इंद्र वृत्रासुर को मार रहे हैं और वृत्रासुर कह रहे हैं इंद्र कि मारो मुझे, कि ये कहा गया है, इसकी भविष्यवाणी हुई है कि तुम्हारे हाथों में मरने वाला हूं और ये भविष्यवाणी भगवान ने की है, तो इसको सिद्ध करो। तो इंद्र वृत्रासुर की शुद्धता को देखकर इंद्र डर रहे थे और उन्हें थोड़ा संशय हो रहा था कि क्या ये वज्र काम करेगा इनके ऊपर। तो वृत्रासुर इंद्र को कह रहे हैं कि अरे मूर्ख, विष्णु ने कहा है, विष्णु ने वज्र दिया है और उस पर संशय कर रहे हो। और युद्ध हुआ दोनों में, और युद्ध जब हो रहा था तो युद्ध की रणभूमि में वृत्रासुर भगवत ज्ञान दे रहे हैं इंद्र को, जैसे कि कृष्ण ने अर्जुन को दिया रणभूमि पर। तो रणभूमि में वृत्रासुर भी ज्ञान दे रहे हैं, भगवत ज्ञान इंद्र को, और बता रहे हैं कि किस प्रकार से चेतना भगवान में होनी चाहिए हर एक कार्य करते समय। और एक समय यह आया कि अपने वज्र से इंद्र वृत्रासुर का गला काट रहे हैं और उस गले को काटने में वृत्रासुर का शरीर इतना सुदृढ़ था कि वृत्रासुर के गले को काटने में इंद्र को एक साल लगा, 365 दिन। सोचिए 365 दिन, जैसे कोई लकड़ी को उससे काटा जाता है, वो क्या कहते हैं उसको, करबत से, तो उस प्रकार से वो वृत्रासुर के गले को काट रहे थे। परंतु उस तिथि में भी वृत्रासुर की चेतना पूर्ण प्रकार से भगवान में लगी हुई थी। सोचिए, हम जप कर रहे हैं रोज और कोई इससे जो कहे करबत, क्या करबत से कोई अपने गले को काट रहा है और कहा माला करो, जब इतना अच्छा माहौल और इतना सुंदर मंदिर, पंखा चल रहा है, इतना अच्छा मौसम है, फिर भी जब माला हाथ में रहती है तो भगवान पर ध्यान नहीं रहता। तो सोचिए, यदि वो कोई चलाना शुरू करे हमारे गले के ऊपर माला करते समय, तो यहां पर वृत्रासुर के साथ ये हो रहा था, परंतु चेतना भगवान में लगी हुई। और इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि इस स्थिति में वृत्रासुर एक देवता है और इंद्र एक असुर है, क्योंकि इंद्र संशय कर रहे थे भगवान की शक्ति के ऊपर। तो यहां पर यही उदाहरण भीष्म देव हमें सिखा रहे हैं कि शुभ और अशुभ किसे कहते हैं। आराधितो यदि हरि तपसा तथा किम, न आराधितो यदि हरि तपसा तथा किम, कि हमारा दृष्टिकोण क्या होना चाहिए कि क्या मेरी चेतना भगवान श्री कृष्ण में लग रही है कि नहीं। इसीलिए ये बहुत ही सुंदर श्लोक में बताया गया है कि जितने भी वैदिक नियम हैं उनका निष्कर्ष क्या होना चाहिए। स्मर्तव्य सततम विष्णुर विस्मर्तव्य न जातुचित सर्वविधि निषेध्यासुर एतयोर एव किंकर। जितने भी विधि विधान हैं वेदों में एतयोर एव किंकर वो सब किंकर हैं ये दो नियम के। और ये दो नियम कौन से हैं? स्मर्तव्य सततम विष्णुर विस्मर्तव्य न जातुचित, कि हर समय भगवान श्री कृष्ण का स्मरण होता रहना चाहिए और एक भी क्षण नहीं जाना चाहिए जब भगवान श्री कृष्ण का स्मरण न हो। तो ये जो दो नियम हैं, ये दो नियम के अधीन है बाकी सारे वैदिक नियम। यदि जितने भी वैदिक नियम हमने पालन किए इन दो नियम को हम सफल नहीं कर रहे तो श्रम एव ही केवलम, केवल वो श्रम करने मात्र से। और ब्रह्मा जी कहते हैं कि जैसे धान्य जिसमें से निकाल दिया गया है और उस फूस को मार रहा है कोई, तो उसमें धान्य है नहीं तो मारने से क्या मिलेगा? पसीना। और केवल शक्ति व्यय होगी। तो इसीलिए यहां पर बहुत ही सुंदर उदाहरण है भीष्म देव का कि किस प्रकार से उन्होंने अपना देह त्यागा, और बहुत ही सुंदर वो उपदेश दे रहे हैं। उस समय बाणों के शैया पर लेटे हुए युधिष्ठिर महाराज को महाभारत में तो बहुत व्याख्या की गई है भीष्म देव के उपदेश, और बहुत ही सुंदर उपदेश है। और केवल युधिष्ठिर महाराज वहां पर उपस्थित नहीं है, सारे पांडवगण, सारे बड़े बड़े ऋषि मुनि और भगवान श्री कृष्ण स्वयं भगवान श्री कृष्ण श्रवण कर रहे हैं जो भीष्म देव उपदेश दे रहे हैं। तो ये हैं महाजन, और इनके पदचिन्हों पर चलेंगे तब जाकर हमारी भक्ति में प्रगति होगी और हम भी सफलता को प्राप्त करेंगे। और यदि हमें भी हमारा शरीर इसी प्रकार से त्यागना है तो इनकी कृपा लेनी होगी। श्री भीष्म देव की। किसी का कोई प्रश्न है? पांडवों को राजा बनाने से भगवान श्री कृष्ण ने धर्म की स्थापना की, क्योंकि धर्म की स्थापना होती है धार्मिक व्यक्तियों की वजह से। और देखिए, किसी स्थान को कहा जाता है ना कि ये स्थान पापी का स्थान है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहां पर किसी व्यक्तियों ने पाप किया होगा। या ये मंदिर को धार्मिक स्थान क्यों कहा जाएगा? क्योंकि यहां पर धार्मिक लोग आके धर्म कर रहे हैं। तो भगवान धर्म की स्थापना इस प्रकार से की कि पांडवों को पूरी पृथ्वी का राज्य दिया, जो कि सबसे बड़े धार्मिक व्यक्ति थे, और जो अधार्मिक व्यक्ति थे दुर्योधन इत्यादि उनका संहार किया। और इसलिए धर्म की भी चरम जो परिभाषा है वो यही है, सर्वधर्मान परित्यज्य। कि वास्तविक धर्म वही है जो कि भगवान श्री कृष्ण के शरणागत ले जाए हमें, वो वास्तविक धर्म है। इसीलिए हालांकि संसार में अलग अलग प्रकार के धर्म लोग पालन करते हैं, नैतिकता का धर्म, मानवता का धर्म, देश का धर्म, ये पूरे ब्रह्मांड का धर्म या पारिवारिक धर्म, सामाजिक धर्म, परंतु ये सारे धर्म यदि हमें भगवान श्री कृष्ण के निकट नहीं ले जा रहे, यदि न उत्पादयेत यदि रतिम, उनके अंदर रति उत्पन्न नहीं हो रही भगवान श्री कृष्ण के अंदर, तो ये सारे जो धर्म हैं श्रम एव ही केवलम। तो क्यों भगवान धर्म की स्थापना किए हैं पांडवों के द्वारा? क्योंकि पांडव केवल कोई साधारण धर्म के पालन करने वाले धार्मिक व्यक्ति नहीं थे, वो शरणागत भक्त थे भगवान श्री कृष्ण के। इसीलिए सर्वोच्च धर्म की स्थापना की भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को पृथ्वी का राज्य देकर।
भौतिक इच्छाएं कभी कभी अपने जीवन में आती है, अपने भक्ति को नष्ट करती है दीमक की तरह। तो हमारे मन में भी कभी कभी भौतिक इच्छाएं तो रहती है, मतलब चाहते हैं कि वो नष्ट करें।
कभी कभी रहती है
कभी कभी, मतलब हमें बहुत बार रहती है मोस्ट ऑफ द टाइम।
अच्छा।
तो हम चाहते कि वो नष्ट करें, लेकिन वो कभी वो थोड़े समय के लिए हम विचार वो मन में रहता है, बाद में फिर से वो इच्छा फिर से बाउंस होती है बैक से बोलते हुए, और वो वही से मतलब परसिस्टेंट वही से इच्छा रहती है। मतलब ऐसे
इच्छा तो आएगी और जाएगी। ये मन जो है, कल हम उदाहरण दे रहे थे, ये मन एक टेप रिकॉर्डर के समान है। और टेप रिकॉर्डर में जो आप कैसेट डालोगे वो टेप रिकॉर्डर बजाएगा। यदि भजन की कैसेट डालोगे तो भजन बजाएगा, सिनेमा के गाने डालोगे तो टेप रिकॉर्डर सिनेमा के गाने बजाएगा। तो ये मन उस टेप रिकॉर्डर के समान है, और ये हमारे ऊपर है कि हम कौन सा कैसेट डाल रहे हैं इसके अंदर। और जो कैसेट डाल दिया है उसके बाद यदि हमें पता लग जाए कि मैंने गलत कैसेट डाली है, तो ये जो ज्ञान है वो ज्ञान उसके समान है जो अब उसे बंद कर रहा है और उस कैसेट को इजेक्ट करके बाहर निकाल रहा है। और फिर केवल बाहर निकाल के कैसेट फेंक देना नहीं है, अच्छी कैसेट डालनी है भगवान की कीर्तन की इस मन में। अब कई बार हमारी स्थिति ऐसी होती है कि हमने कैसेट डाली है, एक साइड में भगवान का कीर्तन है, दूसरे साइड में सिनेमा के गाने भी हैं, तो दोनों कई बार बजते रहते हैं। कभी टेप रिकॉर्डर खराब होता है तो दोनों साइड एक साथ बजना शुरू होता है तो हमारी स्थिति ऐसी है। तो इसलिए जो एक साइड जिसमें सिनेमा के गाने डाले हैं उसको इरेज करना है, मिटाना है, और उसमें भी कीर्तन डालना है। तो कल हम दुर्योधन और अर्जुन के विषय में चर्चा कर रहे थे कि हमारे अंदर दुर्योधन भी है, धृतराष्ट्र भी है, अर्जुन भी है। हालांकि अभी ज्यादा धृतराष्ट्र और दुर्योधन का संग होता है कलयुग में। तो हम सत्संग में आते हैं किस लिए? अर्जुन को खोजने के लिए। हमारे अंदर वो दैवी गुण को खोजने के लिए। तो इसलिए जितना ज्यादा श्रवण होगा उतना अधिक वो जो कैसेट है उसमें से वो गलत चीजें मिटती रहेंगी, है कि नहीं? और उसके साथ साथ सही रिकॉर्डिंग भी होगी। ये श्रवण कीर्तन का महत्व है। तो अभी स्थिति ऐसी है, आपने कहा कि कई बार जो भौतिक इच्छाएं हैं वो बाउंस होती हैं। पहले तो बाउंस भी नहीं होती थी, कोई चीज बाउंस होना मतलब पहले दूर होती है ना, फिर आती है। यदि एक गेंद है, गेंद को आप दीवार पर बाउंस कर रहे हैं, तो पहले गेंद दीवार पर जाएगी फिर बाउंस होकर आएगी। यदि गेंद को पकड़ कर रखो तो कोई बाउंस नहीं हो रही हो, तो बाउंस हो रही है मतलब कुछ समय के लिए गेंद नहीं है। तो पहली स्थिति क्या थी हमारी कि पकड़ कर रखे थे उस गेंद को, इच्छा को, तो बाउंस होना सवाल ही नहीं है। तो उस स्थिति से अब इस स्थिति तक तो आ गए हैं, तो प्रगति हो गई है ना कि गेंद बाउंस होना शुरू हुई। और धीरे धीरे यदि इस पद्धति को हम तीव्रता से करते जाएंगे तो वो गेंद इतनी दूर फेंकेंगे कि कोई उसमें आशंका नहीं रहेगी कि वो फिर से आएगी कि नहीं गेंद। और उसे कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज। कई बार हम चाहते हैं कि गेंद को इतना दूर फेंके कि बाउंस होके आ जाए वापस, हमारे अंदर शक्ति है उसे उठाकर दूर फेंकने की, सबके अंदर शक्ति है उस गेंद को उठाकर दूर फेंकने की, परंतु लगता है दूर फेंक दूंगा तो फिर मेरा जो खेल चल रहा है उसमें आनंद नहीं मिलेगा, तो फिर थोड़ी दूर फेंकते हैं ताकि वो वापस आ जाए बाउंस होके। ठीक है, उसको हाथ में रखने से तो अच्छा है। हाँ
रोजी, आपने जो शुभ और अशुभ के बारे में कहा उस, तो ये जो शुभ या अशुभ, ये विशिष्ट समय जो शुभ है अशुभ है, ये जो नक्षत्र या ग्रह की स्थिति से वो वैदिक शास्त्र में दिया जाता है, तो उसका परिणाम यानी उस समय में शुभ या अशुभ होता है उस विशिष्ट स्थिति से। तो हम जब कोई व्यवहारिक कार्य करते हैं या बाकी अन्य लोग भी जो व्यवहारिक कार्य करते हो, तो ये समय के बारे में देखते हैं शुभ या अशुभ घड़ी है, तो क्या हमें वो नहीं देखना चाहिए? मतलब क्योंकि वो जो नियम है या शुभ या अशुभ जो समय का फल आने वाला है वो तो सबके लिए ही रहेगा, भले वो भक्त है या अभक्त है। मतलब
नहीं, 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 जो आपने कहा समय या नक्षत्र या किसी का भाग्य, किसी की कुंडली, ये सारे जो चीजें हैं, ये जब तक कोई व्यक्ति भगवान के शरणागत नहीं होता तब तक ये सारे कार्य उसके ऊपर कार्यरत रहते हैं। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी ने एक भक्त को देखा कि वो बहुत से अलग अलग प्रकार के मणि पहने हुए थे और वो पत्थर होते हैं, तो प्रभुपाद जी ने पूछा ये सब क्या है? ये शनि है, ये शनि के लिए पहना है, ये इनके लिए पहना है, ये केतु के लिए, राहु के लिए, इसके लिए। प्रभुपाद जी ने केवल हरे कृष्णा जप करो, भगवान श्री कृष्ण की इच्छा होगी तो एक लात मारेंगे तो ये सारे जो अपशगुन, ये सारे जो नक्षत्र गलत कार्य कर रहे हैं वो दूर फेंके जाएंगे।
हम जो व्यवहारिक कार्य या किसी ऐसे कार्य की शुरुआत वगैरह जो करते हैं तो उसमें फिर मतलब किसी भी समय हम कुछ भी करें तो कुछ उसमें आपत्ति नहीं, ऐसा आप कहना चाहेंगे? मतलब जैसे ऐसा है कि अगर कोई किसी नए व्यवसाय की शुरुआत कर रहा है या कोई किसी नए घर में जा रहा है तो उसके लिए भी लोग वो मुहूर्त वगैरह देख के, वो किसी विशिष्ट समय को फिर वो देख के फिर उसमें वो कार्य को शुरुआत कर,
मुहूर्त वगैरह देखा जाता है, परंतु उसे भगवान श्री कृष्ण की सेवा में वो मुहूर्त को लगाया जाता है। यदि उसे भगवान श्री कृष्ण की सेवा में नहीं लगाया जा रहा तो वो मुहूर्त कोई मुहूर्त नहीं है, वो केवल भौतिक आसक्ति को बढ़ाने के लिए एक और बंधन है। अब देखिए, जब हम बीमार होते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं, तो अब ये शास्त्र का कोई कार्य नहीं है, कोई आध्यात्मिक कार्य नहीं डॉक्टर के पास जाना, उसे कोई भक्ति में प्रगति नहीं होने वाली। परंतु डॉक्टर के पास जाकर दवाई लेकर जब हम स्वस्थ होते हैं तो उस स्वस्थ शरीर से जब भगवान का स्मरण श्रवण कीर्तन करते हैं तो वो जो कुछ हमने किया डॉक्टर के पास जाकर दवाई लेना, वो भी आध्यात्मिक कार्य हुआ। तो यदि कोई हम व्यवसाय चालू कर रहे हैं, इसलिए श्री प्रभुपाद जी व्यवसाय तो दूर की बात है, प्रभुपाद जी ने जब कृष्ण बलराम मंदिर की स्थापना की वृंदावन में तो बड़ा होम यज्ञ, क्योंकि बाकी सारे ब्राह्मण वो ये नहीं समझने चाहिए कि ये मंदिर प्रामाणिक नहीं है क्योंकि यहां पर होम नहीं हुआ, तो इसलिए होम यज्ञ रखा। और जब वो होम और यज्ञ चल रहा था, प्रभुपाद जी ने कहा वहां कोने में कीर्तन चालू करो, और वो प्रभुपाद जी ने कहा वो सबसे महत्वपूर्ण है, वो कीर्तन के वजह से कृष्ण बलराम की स्थापना हो रही है, केवल होम करने से नहीं कुछ हो रहा। तो प्रभुपाद जी ने उस उदाहरण से सिखाया कि वास्तविक प्रगति, आध्यात्मिक प्रगति तभी होगी जब ये सब शून्य के समान है, या अच्छा मुहूर्त या नक्षत्र या कुंडली, ये सब शून्य के समान है। जब तक वो एक नहीं लगता सामने, ये शून्य केवल शून्य ही रहेंगे, चाहे कितने भी शून्य, कितनी भी अच्छी तरीके से आप लिखो, बहुत अच्छी हैंडराइटिंग से शून्य लिखने से क्या उसका वैल्यू नहीं बढ़ जाता, वो शून्य ही रहेगा। तो चाहे कोई ज्योतिषी के पास जाए, चाहे वास्तुशास्त्र या जो भी कुछ है, जानते हैं आप लोग सब, इन सब में सब सबका एक साथ निर्णय लेकर निष्कर्ष यदि ये निकलता है कि मैं भगवान आराधितो तो यदि हरि, वो हो रहा है तो ये सब की कोई आवश्यकता नहीं है, और यदि भगवान श्री हरि की आराधना हो रही है तो ये सब का कोई फायदा नहीं। तो ये दो जो शब्द है वो समझ लो कि भगवान श्री कृष्ण के शरणागत हैं तो और कोई चीज की आवश्यकता नहीं, और यदि भगवान श्री कृष्ण के शरणागत नहीं है तो कोई चीज का फायदा नहीं। आवश्यकता और फायदा, दो शब्द ध्यान रखो। एक तो है कि भागवत की जो कथाएं हैं उनमें ये सारे प्रसंगों में जो कुछ हुआ, कई प्रसंगों में श्राप दिया गया, कई प्रसंगों में बिना श्राप की लीलाएं हुई, एक तो कारण है कि भगवान की योजना थी कि भगवान महाराज चित्रकेतु को जल्द से जल्द अपने धाम बुलाना चाहते थे। तो महाराज चित्रकेतु के जीवन में भगवान ने ये योजना की कि महाराज चित्रकेतु को श्राप मिले पार्वती के द्वारा, और भगवान पार्वती के हृदय में परमात्मा स्वरूप में प्रेरणा दी कि इनको श्राप दो, नहीं तो महाराज चित्रकेतु केवल एक राजा बनकर कितने जन्म लगते थे, कितने साल लगते थे उनको भगवान के धाम जाने। परंतु यहां पर उन्हें जब श्राप दिया गया और असुर के कुल में जन्म हुआ उनका, परंतु भगवान ने रक्षा की उनकी चेतना की, और भगवान पार्वती और चित्रकेतु के उदाहरण से यह दिखा रहे थे कि यदि आप शिवजी की अर्धांगनी भी क्यों ना हो, और यदि कोई असुर कुल में भी जन्म क्यों ना ले, महत्व किसका है? कृष्ण भक्ति का। ये भगवान ये दोनों उदाहरणों से सिखा रहे थे, तो ये प्रयोजन था उनका। तो हम किसी के ऊपर दोष नहीं आरोपण कर रहे कि पार्वती में कुछ कमी हो गई इसलिए उन्होंने श्राप दिया, नहीं, वो भगवान की योजना थी। और कोई प्रश्न है किसी का? श्रील प्रभुपाद की ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की इताई गौर प्रेमानंदी।